नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश अगले 3 सालों में किया जाएगा। कोलकाता में 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में दुनिया भर के कारोबारी इकट्ठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस समिट में उपस्थित थी। रिलायंस ने इस समिट में बंगाल में निवेश से जुड़ी बड़ी घोषणा की। कोलकाता में चल रहे 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस बंगाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रिलायंस ने अब तक बंगाल में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले 3 वर्षों में हम 20,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेंगे। 20,000 करोड़ का ये निवेश टेलीकॉम, रिटेल और बायो एनर्जी सेक्टर में किया जाएगा। अंबानी ने बताया कि हम 5G को राज्य के हर कोने तक लेकर जा रहे हैं, खासकर ग्रामीण बंगाल को जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वो सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के असत्यापित दावे करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए, जिससे भ्रामक विज्ञापनों और असत्यापित दावों पर रोक लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी वाणिज्यिक इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि वो कोई भी भ्रामक विज्ञापन और गलत दावा ना करें। साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप जो कर रहे हैं वो कानून का खुला उल्लंघन है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे, यहाँ तक कि प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। भारत सरकार लगातार देश के अंदर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब इसका पॉजिटिव असर भारत के डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। सोमवार को लगातार 3rd दिन देश में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक ने नई ऊंचाइयां हासिल की। दरअसल सोमवार को भारत के अंदर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 4,59,526 रही। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में इजाफा देख सिविल एविएशन मंत्रालय भी उत्साह से लबरेज है। सोमवार को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के बाद भारतीय डोमेस्टिक एविएशन में बदलाव की कहानी न सिर्फ जबरदस्त है बल्कि प्रेरणादायक भी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि ताजपुर गहरे समुद्री बंदरगाह के विकास के लिए जल्द ही एक निविदा जारी की जाएगी। पहले अडानी समूह को ये परियोजना सौंपने की बात कही गई थी। बनर्जी के इस ऐलान से गहरे समुद्री बंदरगाह वाली इस परियोजना को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। ये परियोजना पहले अक्टूबर 2022 में अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड को दी जाने वाली थी। APSEZ इसके लिए लगाई गई 2 अंतिम बोलियों में से सबसे कम बोली लगाने वाली बोलीदाता थी। उस समय JSW ग्रुप भी एक दावेदार था। बनर्जी ने यहां आयोजित बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में 12 गेम चेंजिंग अवसर हैं। उन्होंने कहा कि पहला अवसर ताजपुर में प्रस्तावित गहरे समुद्र का बंदरगाह है जो निविदा के लिए तैयार है। आप निविदा में भाग ले सकते हैं। ये $3 अरब यानी 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा। GST विभाग के अधिकारियों ने 199 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली 48 फर्जी कंपनियों के गठजोड़ का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर के पूर्वी दिल्ली आयुक्त कार्यालय ने एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर नकली बिल बनाने वालों के खिलाफ समन्वित ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया था। मंत्रालय ने कहा कि अभियान में 199 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी ITC का लाभ उठाने वाली 48 फर्जी कंपनियों के गठजोड़ का पता लगा। ऑपरेशन में कुल 48 नकली फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है जो फर्जी बिल के आधार पर काम कर रही थी। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट पटियाला हाउस द्वारा 2 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू और उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सह संस्थापक रविंद्रन बायजू को 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। वित्तीय जांच एजेंसी ने बायजू और उसके मुख्य प्रवर्तक पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए कई आधारों का उल्लेख किया। इसमें देश के बाहर भेजे गए अग्रिम धन के संदर्भ में आयात के दस्तावेज जमा करने में नाकाम रहने का आरोप भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी को मिले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुकाबले निर्यात से हुई आय का ब्यौरा देने में देरी का आरोप भी लगाया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर।